मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 4 जुलाई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन प्यारे साथियों का नाम है शिशिर कुमार, आपका गांव है पलतू बिघा, जिला जहानाबाद बिहार से हैं आप। सूर्यकला, आपका गांव है सेमरिया, जिला सिवान बिहार से। करण कुमार साहा, गोमो झारखंड से। संतोष कुमार साहू, आपका गांव है कुर्सा, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से। और दीपक कुमार पाठक, गांव कोयली, जिला सीतामढ़ी बिहार से। तो शिशिर, सूर्यकला, करण, संतोष और दीपक, आप पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे थोड़ा प्रशासनिक सुधार पर बात करना चाहूंगा, लेकिन बहुत अलग अंदाज से। इसमें मैं आपसे प्रशासनिक सुधार नामक एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी न दे करके कुछ दूसरे ही तरह से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, लेकिन आइए इससे पहले हम लोग न्यूज एनालिसिस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, न्यूज में, कल के न्यूज में आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनी होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा कहना चाहिए, और वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है जब वो एक मैगजीन को साक्षात्कार दे रहे थे। वो खासकर माओवाद को लेकर है। माओवाद का मतलब है जहां नक्सलवादी गतिविधियां हो रही है ज्यादातर। खासकर देखिए, जो माओवाद है, माओवाद एक तरह से अब इसको फिलॉसफी कह दिया गया है। जो कार्ल मार्क्स थे, मार्क्सवाद मूल फिलॉसफी है, उस मार्क्सवाद की व्याख्या फिर लोगों ने अपने अपने ढंग से की, राइट। उसमें एक व्याख्या लेनिन ने की, जिन्होंने रूस में क्रांति की, रूस में जो क्रांति हुई है, जो सर्वहारा क्रांति हुई, जिसमें जार की सत्ता को हटा करके और मजदूरों की सत्ता स्थापित की गई, वो आपको मालूम होगा रूस की क्रांति, तो लेनिन ने की थी। तो उन्होंने अपने ढंग से मार्क्सवाद की व्याख्या की, तो उसको लेनिनवाद कहा गया। इसके बाद दूसरे जो बड़े लीडर हैं, वैसे बहुत से और भी हैं, दूसरे बड़े लीडर हैं माओ त्से तुंग, इनका पूरा नाम था, और ये चीन में थे। 1949 में चीन में इन्होंने क्रांति की, उसी तरह के, मतलब कार्ल मार्क्स को आधार बनाया, उसकी अपने ढंग से उन्होंने व्याख्या की और उन्होंने वहां क्रांति करके मार्क्सवादी व्यवस्था कायम की, साम्यवादी सरकार स्थापित की। माओ का एक सिद्धांत था कि जो स्वतंत्र आजादी है वो बंदूक की गोली से निकलती है, ये उनका बड़ा फेमस वाक्य है। अब आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि बंदूक की गोली से निकलती है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वहां हिंसा को महत्व दिया जा रहा है, केवल वकालत नहीं की जा रही है, बल्कि यह कि अगर आपको आजादी चाहिए तो आपको हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो उनके विचार का केंद्र है, और भी दूसरी चीजें हैं। तो अभी जिस संदर्भ में हम माओवाद की बात कर रहे हैं, भारत में जो नक्सली, जो अपने को आंदोलनकारी कहते हैं, या कुछ क्षेत्रों में उस तरह से नक्सलवादी आंदोलन नहीं है, लेकिन वो अपने को माओवादी कह करके अपने कामों को अंजाम देते हैं, तो ये बेसिकली हिंसा पर इनकी बहुत बड़ी आस्था है, कह लीजिए। आस्था शब्द का अलग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हिंसा पर ये बहुत यकीन करते हैं, और नक्सली जो घटनाएं होती हैं उनसे आप अनुमान लगा सकते हैं। आपको मालूम है कि भारत के कुछ राज्य नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं, और खासकर ऐसे राज्य हैं जो वन क्षेत्र हैं और जहां हमारी आदिवासी जातियां और जनजातियां सबसे बड़ी संख्या में रहती हैं। तो कुछ राज्य हैं और उन्होंने पूरा का पूरा एक कॉरिडोर जैसा बना रखा है, वो पूरा का पूरा एक रेड कॉरिडोर ही उसको कहा जाता है, जो उधर आपके आंध्र प्रदेश से शुरू होकर के और ऊपर आपके बिहार झारखंड तक चला जाता है, छत्तीसगढ़ का भी उसमें हिस्सा आ जाता है, वो मैप पर आप देख लेंगे। बहुत समय से भारत के ये जो राज्य हैं इससे बहुत जबरदस्त रूप से परेशान हैं, और ये आपके सिविल सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी जो बात कही है, किस तरीके से आप अपने टॉपिक को अपडेट करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है सिविल सर्विस की तैयारी में। तो अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, आप उससे सहमत हो सकते हैं, आप उससे असहमत हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई डेटा दिया है तो आपके पास होना चाहिए। वो उन्होंने तीन बहुत महत्वपूर्ण डेटा दिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, तीन चार बातें कही। पहला तो उन्होंने कहा कि सन 2013 की तुलना अगर हम 2017 से करें तो जो माओवादी गतिविधियों से जो मृत्यु होती थी उसमें उस तरह की हिंसक घटना में काफी कमी आई है, 34% के आसपास की उन्होंने बात की, मतलब एक तिहाई कमी आई है, यानी कि हिंसक घटनाएं थोड़ी सी कम हुई है। इसके बाद देखिए कि उन्होंने फिर कुछ और बातें कही जो इसे प्रूफ कर रही है कि हां हिंसक घटनाएं कुछ कम हुई होंगी। तीन बातें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि जो इससे प्रभावित जो जिले हैं उनके 34 जिलों में लगभग 4,500 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं और लगभग 2,400 टावर लगाए गए हैं और 4,072 टावर के लिए और अनुमति दी गई है, यानी कि 4,072 टावर और लगाए जाएंगे। अब सवाल है सड़क और टावर का क्या मतलब यहां? देखिए सड़क और टावर का ये मतलब है कि जो वहां जो नक्सलवादी जो सक्रिय है वो नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र का विकास हो, उनके क्षेत्र में सड़कें बने, क्योंकि फिर पुलिस वहां पहुंच जाएगी, उन तक सरकार की पहुंच हो जाएगी, तो फिर अपनी गतिविधियों को अंजाम कैसे देंगे, तो बनने भी नहीं देते। अगर उन क्षेत्रों में सड़कें पहुंच जाती हैं और टावर के माध्यम से कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक हो जाता है तो नक्सलियों पर दबाव बढ़ने लगेगा, तो वो इन सब चीजों को रोकते हैं। तो जो सड़कें बनी, जो टावर लगाए गए, कहने का मतलब यह कि उससे हिंसक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में सरकार को मदद मिली है। और उन्होंने फिर एक डेटा दिया कि हमारे देश के लगभग 126 जिले नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित थे, जिसमें से 44 को अब उसमें से निकाला जा चुका है, यानी कि वहां अब इस तरह की गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं, उस लिस्ट से वो बाहर हो गए हैं, तो एक अच्छी खबर है। तो इस तरीके से जो आप न्यूज सुनते हैं और उसमें अगर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा आपको मिल जाते हैं तो आपको उनका उपयोग करना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ी सी दूसरी चीजों पर आता हूं और थोड़े से अलग तरीके से आता हूं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया कल, और वो दिया कि आप देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत कम होती चली जा रही है, राइट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी घबराने की कोई बात नहीं है, अभी भी उसकी जो कीमत है रुपए की कीमत डॉलर की तुलना वो 5-7% ज्यादा है, ये बात उन्होंने कही। तो आप लोग इस पर विचार कीजिएगा, मैं आप लोगों को फूड फॉर थॉट दे रहा हूं जिस पर आपको विचार करना है, पहली लाइन। दूसरा उन्होंने ये भी कही दूसरी बात कि ट्रंप की नीतियों से ग्लोबल इकोनॉमी में समस्याएं पैदा हुई हैं पर भारत बेहतर स्थिति में है। ट्रंप की नीतियों से ग्लोबल इकोनॉमी में समस्याएं पैदा हुई हैं पर भारत बेहतर स्थिति में है, इसको भी आप लोग अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। ये मैंने कहा कि फूड फॉर थॉट दे रहा हूं जिन पर आपको विचार करना है। मैं आज आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं दैनिक जागरण का, जो डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जी का है, दोहरे फायदे का ट्रेड वार, ये उसका टाइटल है। इसमें से मैं आपको दो सेंटेंस दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप इन सेंटेंसेस पर अपनी टिप्पणियां लिखें या इसको प्रूफ करें, एक्सप्लेन करें। इनकी पहली टिप्पणी है कि अमेरिका और चीन के बीच मंडरा रहे ट्रेड वार के कारण वैश्विक मंदी आ सकती है। ये भरत झुनझुनवाला का स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने मेंशन किया अपने आर्टिकल में, कोई एक विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री, उन्होंने ये कहा, अमेरिका और चीन के बीच मंडरा रहे ट्रेड वार के कारण वैश्विक मंदी आ सकती है। तो लिखिए, आप सोचिए कि ये कैसे हो सकता है। इन्होंने अपनी तरफ से निष्कर्ष निकाला है इस आर्टिकल में डॉक्टर झुनझुनवाला ने, और वो है कि आम आदमी को ट्रेड वार से दोहरा लाभ हो सकता है, रोजगार बढ़ेंगे और सरकारी कल्याणकारी योजनाएं भी बढ़ेंगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, आम आदमी को ट्रेड वार से दोहरा लाभ हो सकता है, रोजगार बढ़ेंगे और सरकारी कल्याणकारी योजनाएं भी बढ़ेंगी। कैसे होगा ट्रेड वार से, कैसे तो रोजगार बढ़ सकता है और कैसे सरकारी कल्याणकारी योजनाएं बढ़ सकती हैं, इन पर आपको विचार करना है, राइट फ्रेंड्स। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। मुख्य विषय, जैसा कि मैंने कहा कि प्रशासनिक सुधार मैंने रखा है। इस बीच में आपने तीन खबरें थोड़े बहुत अंतर से सुनी है। पहली जो खबर थी वो लेटरल एंट्री को लेकर के थी कि सरकार ने ये एक विज्ञापन निकाला है जिसमें केंद्र सरकार के 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों में बाहर से लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर लेकर आया जाएगा, और इसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। इसके बाद फिर लोकपाल के बारे में कल हम लोगों ने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया ये लोकपाल के पदों पर आप कब तक भर्ती कर रहे हैं, इसके बारे में जरा हमें बताइए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर एक निर्देश दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं और पुलिस कमिश्नर होते हैं, इनके जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये एडहॉक बेसिस पर नहीं होने चाहिए, एक्टिंग आधार पर नहीं होना चाहिए कि अभी वो कार्यवाहक डीजीपी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, इसके लिए होना ये चाहिए कि जब किसी का कार्यकाल खत्म होना हो तो उसे 3 महीने पहले जो राज्य सरकार है वो कुछ अच्छे ऑफिसर्स का नाम यूपीएससी को भेजे, यूपीएससी उन पर विचार करेगी, फिर यूपीएससी उसमें से 3 नाम सेलेक्ट करके राज्य सरकारों को देगी और फिर राज्य सरकार उसके उसमें से कोई भी एक नाम सेलेक्ट करके अपने यहां डायरेक्टर जनरल पुलिस या कमिश्नर उन्हें अपॉइंट कर देंगे, और साथ ही साथ ये भी कि उनका कार्यकाल कम से कम 2 साल का तो होना ही चाहिए, ये उन्होंने निर्देश दिए हैं। राइट, अब आप देखें कि तीनों को जब हम मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं ये तीनों प्रशासनिक सुधार से ही जुड़े हुए हैं। ये बात अलग है कि अंत वाला बिल्कुल सीधे सीधे पुलिस सुधार से, पुलिस व्यवस्था के सुधार से जुड़ा हुआ है, लोकपाल का संबंध राजनीतिक सुधार से भी हो जाता है और पहले वाले का तो प्रशासनिक सुधार से सीधे सीधे है ही। तो आपको जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं या खबरें आती हैं तो अपने दिमाग में रखना होता है ताकि जब आप आंसर लिखें तो जो करंट इश्यूज जो हैं उसको लेकर के, उस टॉपिक को लेकर के, वो उसमें किसी न किसी तरीके से आ जाए। राइट, अब इसमें आप देखिए कि लेटरल एंट्री को लेकर के बहुत सी चीजें आपको पढ़ने को मिली होंगी, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसके समर्थन में हैं। लोकपाल के बारे में मैं आज आपको दैनिक हिंदुस्तान का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसको पढ़ लीजिएगा, वक्त इतना नहीं है कि मैं उसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुलिस प्रणाली में सुधार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको तैयारी करनी होगी, अच्छे से तैयारी आपकी होनी चाहिए, इसलिए भी देखिए इस टॉपिक पर होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल आप क्या बनने जा रहे हैं, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आप जिस सर्विस में जा रहे हैं उस सर्विस के बारे में तो आपकी बहुत अच्छी जानकारी होनी ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर बनने जाएं और कोई आपका इंटरव्यू ले रहा हो तो वो यही चेक करेगा ना कि भाई आपको डॉक्टरी का कितना ज्ञान है। सिंपल से सिंपल व्यक्ति अगर वो ड्राइवरी करने के लिए भी जाता है और उसका इंटरव्यू होगा तो उससे गाड़ी के बारे में पूछा जाएगा ना कि भैया उस पता लग जाए ताकि इंटरव्यू बोर्ड को कि भैया इसको गाड़ी के बारे में कोई जानकारी है कि नहीं, चला लेगा कि नहीं चला लेगा। तो बट नेचुरली कि जो सिविल सर्विस का टॉपिक है वो आप चूंकि वही बनने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, फिर ये आपके सिलेबस में भी है। तो दोस्तों मान करके चलिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो डीजीपी जो डेजिग्नेशन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में इसे कहते हैं पुलिस महानिदेशक, वो राज्य में पुलिस का सर्वे सर्वा होता है। जैसे चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तो पूरे के पूरे प्रशासन का सर्वे सर्वा होता है, लेकिन वो आईएएस का सर्वे सर्वा होता है। आप समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, दोनों की तुलना नहीं है, चीफ सेक्रेटरी बहुत बड़ी हस्ती है। पुलिस जो निदेशक महानिदेशक है वो मूलतः पुलिस विभाग का ही सर्वे सर्वा है। राइट, तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है आप इमेजिन करके देखिए कि वो कितना महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करता है और उन पर राजनीतिक हस्तक्षेप होते रहते हैं। जो राजनेता हैं वो अपने पसंद का पुलिस महानिदेशक पसंद कर अपॉइंट करेंगे ताकि उनकी जो काम है या उनकी जो इच्छाएं हैं उनके आदेशों का पालन होता रहे, सही और गलत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और प्रशासन चलता रहे। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। तो मित्रों ये थोड़ी सी बात आज के मुख्य विषय प्रशासनिक सुधार के बारे में। दूसरे और भी बहुत से मैं आपको एडिटोरियल कमेंट्स और एडिटोरियल आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपने अपने जरूरत के हिसाब से मित्रों देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से 2 मित्रों के नाम हैं राहुल मुछाला और वीरेंद्र कुमार कन्हेर, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।